नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति जनगणना पर रोक लगाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, किसानों को सिंचाई के लिए पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास जारी। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की विशेष अदालत ने पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को पुलिस रिमांड पर भेजा। और प्रदेश में बीते कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश का सिलसिला थमने के साथ ही गर्मी ने जोर पकड़ा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में जाति जनगणना पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इस बीच जनगणना 2027 के पहले चरण में अब तक 5,72,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना में भागीदारी की है। भारत के महापंजीयक ने बताया कि डिजिटल जनगणना की दिशा में बढ़ती जन भागीदारी का परिचायक है। स्वगणना की यह प्रक्रिया 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसके तुरंत बाद 16 अप्रैल से 15 मई तक मकान सूचीकरण और आवास गणना का काम किया जाएगा। जनगणना का दूसरा चरण अगले साल फरवरी में शुरू होगा, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी विस्तृत डेटा एकत्र किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया। इस अवसर पर श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जब नागरिक संविधान को अपनी भाषा में पढ़ और समझ सकते हैं तो शासन और जनता के बीच की दूरी कम हो जाती है। इस अवसर पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जब संविधान सभी भाषाओं में उपलब्ध होगा तो आम लोग भी इसे पढ़ सकेंगे और अपने अधिकारों को समझ सकेंगे।
ये हमारा संविधान जो है सभी भाषाओं में जब आएगा तो नेचुरली जो सामान्य मानवी है वो भी पढ़ करके अपने अधिकार को भी समझेगा। संविधान में संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए लिखा क्या है उसकी भी जानकारी कराएगा।
गौरतलब है कि आज ही के दिन 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर मान्यता दी गई थी। इसी उपलक्ष्य में देश में 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया है। उन्होंने विद्यार्थियों से लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी आग्रह किया है। वे गोवा विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने शासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को और मजबूत करना है।
विधायी संस्थाओं के अंदर नीतियां पॉलिसी बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई और देश ने पहली बार नई संसद भवन के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। आने वाले समय में पंचायत से लेकर दिल्ली की पंचायत तक विधायी संस्थाओं के अंदर महिलाओं की भागीदारी बने ताकि वह नीतियां बना सके, पॉलिसी बना सके।
आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने होम्योपैथी को करुणा और प्रमाण पर आधारित विज्ञान बताया है। श्री जाधव आज विश्व होम्योपैथी दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री जाधव ने कहा कि होम्योपैथी की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है और लोग इस इलाज पद्धति को वरीयता दे रहे हैं। श्री जाधव ने कहा कि देश के स्वास्थ्य मॉडल में होम्योपैथी एक सतत स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में स्थापित हो रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसानों की पहली आवश्यकता पानी है और इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आज जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के कर्टन रेजर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर जिले के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 दिन के ग्राम 2026 में करीब 1.5 लाख किसान भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए 15 अप्रैल से प्रदेश भर में 20 दिन तक विशेष रथ चलाए जाएंगे।
15 तारीख को हम ग्राम के लिए जो गांव-गांव में जाएंगे, हमारे रथ तैयार हो रहे हैं। उन रथों में एग्रीकल्चर के हमारे सुपरवाइजर हैं, कृषि मित्र हैं। हर गांव में हमारा पंचायत में ज्यादा से ज्यादा रूट बना करके कोशिश करें उनको लेकर के जाएं। 20 दिन हमारे ये रथ रहेंगे, गांव में जाएंगे। उसमें हम एक सुझाव पेटी भी रख रहे हैं। किसानों के सुझाव बहुत आवश्यक है। उन सुझावों को रखते हुए कि किसान क्या चाहता है, किसान की आय कैसे बढ़ सकती है, और हम भी उसमें कहना चाहेंगे। किसान जब सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार हमें फायदा दे, हमारे किसानों को उन्नत करे, तो हमारा भी अधिकार बढ़ता है कि किसान भी पूरी तरह से साथ दें और उसको कैसे आगे बढ़ाना है ये किसानों को भी करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने बाद में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा तथा समानता के लिए संकल्पित है। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना के माध्यम से अब तक 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। वहीं लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर अब 1.5 लाख रूपये कर दिया गया है। मां वाउचर योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच सुविधा दी जा रही हैं। साथ ही बालिकाओं के लिए निशुल्क HPV वैक्सीन की भी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय से 42 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 के तहत संचालित होने वाली ये विमेन PCR वैन प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सहायता प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वाहनों को रवाना करने के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और विशेष रूप से महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत आज डीग जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने पूंछ रेखा लौठा में चलाए जा रहे विभिन्न संरक्षण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने का काम किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
समग्र रूप से पोंछड़े के लोटे का एक तीर्थ के रूप में विकास हो, आने वाले तीर्थयात्री के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं भी हो, सौंदर्यीकरण भी हो, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इसका विकास हो, बिना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए लाखों तीर्थयात्रियों के लिए कैसे सुविधाजनक बनाया जा सकता है, इस दिशा में विनम्र प्रयास करेंगे।
झुंझुनू जिले में आज एक बेकाबू ट्रेलर की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया। घटना तड़के नंगली दीप सिंह गांव में एक ट्रेलर के खेत के पास बने तंबू में घुसने से हुई, जहां सो रहे 7 लोग इसकी चपेट में आ गए। पुलिस के अनुसार ये परिवार मजदूरी के लिए इस क्षेत्र में आया हुआ था और खेत के पास ही तंबू लगाकर रह रहा था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन घोटाले में आज पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल को 13 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ब्यूरो ने गहन पूछताछ के लिए अदालत से रिमांड की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उन्हें कल नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें जयपुर लाया गया। इस बीच कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी को वर्तमान सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार के कार्यकाल में उन्होंने जल जीवन मिशन घोटाले से संबंधित कई तथ्य सामने रखे थे, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
जल जीवन मिशन का घोटाला था, 900 करोड़ का तो सीधा फर्जी डॉक्यूमेंट बना के काम ले लिया था और धरातल पर काम भी नहीं हुए और 20,000 करोड़ के जो टेंडर थे उनमें टेंडर में ही गड़बड़ी थी, तो उसके तथ्य मैंने मीडिया के सामने रखे थे।
और अब मौसम। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी और बारिश का दौर थमने के साथ ही अब गर्मी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहा और तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा। वहीं राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज और कल बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। विभाग ने आगामी दो सप्ताह में तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है, जिससे कई शहरों में पारा 40 डिग्री के ऊपर जा सकता है। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज कोटा में पोषण पखवाड़े के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महिला और बाल विकास विभाग की उपनिदेशक सीता शर्मा ने कुपोषण से बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संतुलित और पौष्टिक आहार के महत्व को रेखांकित करते हुए गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए खानपान में हरी सब्जियां और मौसमी फल अनिवार्य रूप से शामिल करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जीवन शैली अपनाने पर भी बल दिया। कार्यक्रम के दौरान पोषण और स्वास्थ्य विषय पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति जनगणना पर रोक लगाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसानों को सिंचाई के लिए पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास जारी। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की विशेष अदालत ने पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को पुलिस रिमांड पर भेजा। और प्रदेश में बीते कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश का सिलसिला थमने के साथ ही गर्मी ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।